मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते प्रिय अरहंतादि जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हे सयाने पूजू मुझे सतत केवल ज्ञान पाने पूजू मुझे सतत केवल ज्ञान पाने। बोली भगवान महावीर स्वामी के दशलक्षण पर्व की आचार्य गुरु और विद्यासागर मुनि महाराज की हम मनुष्य की तरह यहाँ इस संसार में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यह हमारे विवेक पर निर्भर है कि हमें कैसा जीना है, क्योंकि हम विवेकवान हैं। दो तरह से हम अपना जीवन जी सकते हैं, या तो हम अपने आप को इस संसार का केंद्र मान करके ईगो सेंट्रिक होकर के जीना चाहें, सबको अपने मातहत परिधि पर रखें और स्वयं केंद्र में रह करके जीने का प्रयास करें, तो अत्यंत संक्लेश पूर्वक अपने जीवन को भी व्यतीत कर सकते हैं। सो जैसे समुद्र में फेंका गया पत्थर अपनी कठोरतावश समुद्र में पड़ा रह जाता है, वैसे ही इस संसार में हम पड़े रह जाएंगे, संसार का ही अनुभव करेंगे। यदि हम अपने जीवन को जैसे समुद्र के जल में एक बूंद अपना जीवन नष्ट करती हुई मालूम पड़ती है, विलीन होते हुए मालूम पड़ती है, लेकिन वो बूंद समुद्र के जल से मिलकर स्वयं समुद्र का ही एक अंश हो जाती है, या कहें कि वो स्वयं समुद्र के समान विशाल हो सकती है, अगर वो अपने अहंकार को छोड़ करके अहम शून्य हो करके जीवन जिए। तो ऐसे ही हम भी सबके बीच रह करके अहम शून्य होकर के अपना जीवन जी सकते हैं। मैं सबका मालिक हूं, सब मेरे अनुसार चलें, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे देश हो, चाहे सारा विश्व हो, मैं अगर ये भावना अपने भीतर रख के चलूं कि सब कुछ मेरे अनुसार हो, तो बताइए क्या ऐसा संभव है? हमारे अनुसार तो होगा नहीं, वस्तु का परिणमन जैसा है उस अनुसार होगा। सो हम व्यर्थ ही संक्लेश करके अपना जीवन व्यतीत करेंगे। कभी कभार वस्तु का परिणमन हमारे अनुरूप हो गया तो हम अहंकार करके भी अपना संसार ही बढ़ाएंगे। ऐसा विचार करके श्रेष्ठ जीवन तो वही है जो हम अहम शून्य होकर जीते हैं, अपनी मान कषाय को जीतने का प्रयास करते हैं। वरना भैया, मान महाविश्वरूप करहि नीच गति जगत में, ऐसा लिखा, वो पढ़ते हैं, जब पूजा करते हैं तब पढ़ते हैं, बाकी जब अहंकार करते हैं तब भूल जाते हैं कि ऐसा लिखा कि मैं मान कषाय के द्वारा नीच गति में जाऊंगा। जैसे द्वीपायन ने अहंकार वश सहन नहीं होने पर क्रोध करके अपना अहित किया, आया तो पहले अहंकार ही कि मेरे पद के अनुरूप उसका अभिनय कर दिया, और अहंकार क्रोध के रूप में आकर बाकी लोगों का अहित हुआ सो हुआ, लेकिन खुद द्वीपायन मुनि महाराज होते हुए भी उनका अहित हुआ। जैसे कि कठोर चट्टान पर बीज बोया जाए तो फलवान वृक्ष नहीं बनता, ऐसे ही ज्ञान और चारित्र कितना भी हो विनय शून्य व्यक्ति के पास में, लेकिन वो फलवान नहीं होता। जैसे कि रावण कितना ज्ञानवान था, आचरण के नाम पर भी उसने बाहर से बहुत सारे व्रत नियम ले रखे थे, लेकिन इसके बावजूद भी अपने अहंकार के कारण आज अपन उसका नाम कैसे लेते हैं, बदनामी करने के लिए लेते हैं, निंदा भाव से लेते हैं, अपने मन में कोई प्रशंसा का भाव रावण का नाम लेते समय नहीं आता। किस वजह से हुआ ऐसा? अहंकार के कारण। अहंकार आता कब है? हमारे भीतर जब दूसरे के गुण सहन नहीं होते तो ईर्ष्या उत्पन्न होती है। ईर्ष्या एक तरह से पैसिव छुपा हुआ अहंकार है, जो सामने आने पर अहंकार बन जाता है और अपनी गुणवत्ता को नष्ट कर देता है, अपने भीतर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ला देता है। मेरे ख्याल से जिसके भीतर जितनी हीनता का भाव रहता उसे उतना ही अहंकार आता, क्योंकि वो दूसरे के गुणों को सहन नहीं कर पाता अपने अवगुणों के कारण। सो अपने अंदर ही हीनता महसूस करता है और दूसरे की गुणवत्ता को सहन नहीं कर पाता, जिसका परिणाम क्या निकलता है? स्वयं अपने भीतर गुणवत्ता का विकास नहीं कर पाता, रिसेप्टिविटी नहीं आ पाती, ग्राहकता उत्पन्न नहीं हो पाती। जैसे कि बरसात में उल्टा कटोरा दिन भर रखा रहे और पानी उस पर गिरता रहे, लेकिन एक बूंद भी पानी उसके भीतर प्रवेश नहीं करता, ऐसे ही इस संसार में दूसरे के गुणों से ईर्ष्या करके अहंकारी व्यक्ति स्वयं अपने भीतर उन गुणों को चाहते हुए भी ला नहीं पाता है, क्योंकि गुण को ग्रहण करने की उसके अंदर भावना ही नहीं है, गुणों को क्रिटिसाइज करने की, उनका अपमान करने की उसके अंदर निरंतर भावना, जो उसके गुणों का ही घात करती है, बनी रहती है। असल में अहंकार हमारे गुणों की मृत्यु है। विचार करें, एक बार ऐसा हुआ कि एक बहुत बड़ा कलाकार था जिसको धीरे धीरे प्रशंसा सुनकर के, भैया बड़ा कठिन काम है प्रशंसा सुनना, खजूर के पेड़ पे चढ़ गए तो गिर हो नीचे। सो प्रशंसा सुनते सुनते उस कलाकार को अहंकार आ गया कि मैं तो बहुत पहुंचा हुआ कलाकार हूं। सो एक दिन उसने सोचा कि मैं तो मृत्यु को भी जीत लूंगा, कैसे जीतूंगा, मैं अपने समान अपनी 9 प्रतिमाएं बनाऊंगा और उनके बीच में बैठ करके 10वां मैं स्वयं मृत्यु को धोखे में डाल दूंगा, पहचान ही नहीं पाएगी कि किसे ले जाना है, सब एक जैसे हैं। ऐसा उसके मन में, देखो अहंकार वश ऐसे विचार आते हैं, आया उसके भीतर और उसने बनाना शुरू किया, 9 प्रतिमाएं बनाई, अपने जैसी ही सामने वाला दांतों तले अंगुली दबा लेता कि भाई हम पहचान ही नहीं सकते कि ओरिजिनल कौन कलाकार है और डुप्लीकेट कौन है। मृत्यु भी आई, उसने चक्कर लगा करके सब देखा, वो भी गड़बड़ा गई कि कौन सही है। देखो कहानी है, नहीं तो मृत्यु नहीं गड़बड़ाती। हाँ, जो उनकी आयु हुई को ले जे, आयु कर्म पूर्ण होने पर मरण होता। सो उसने देखा कि अरे इतना एक जैसे सब स्टैच्यू भी और ओरिजिनल भी एक जैसे लग रहे हैं, तो वो भी तरह धोखे में पड़ गई कि कैसे पहचाने। तो उसको एक चीज दिमाग में आई कि अहंकारी व्यक्ति अपने दोष बताए जाने पर चुप नहीं रह सकता। हां, दोष होने पर भी अगर कोई उसे इशारा करता है तो विनयवान होगा, तो उन दोषों को स्वीकार कर लेता, क्योंकि उसे उन दोषों को हटाना है। लेकिन जो अहंकारी है वो तो जानता है कि मेरे भीतर की अवगुण है, लेकिन कोई कहे नहीं। सो जैसे ही मृत्यु ने चक्कर लगा करके घूम फिर करके खड़े होकर के कहा कि कलाकार तो बहुत माहिर है बनाने में, लेकिन बस, लेकिन जैसे ही कहा तो जो ओरिजिनल कलाकार था जो बैठा था बिना हिले डुले सब मूर्तियों के पास, सो फौरन बोल पड़ा कि क्या गलती है गई। तो मृत्यु ने कहा कि जे गलती रह गई, चलो पहचान में आ गए तुम। उसकी गुणवत्ता कैसे नष्ट हुई, उसकी मृत्यु कैसे आई, कलाकार की मृत्यु में उसका ही अहंकार कारण बन गया। हम सबके भी जो अंदर श्रेष्ठ गुण हैं, उन सब गुणों को नष्ट करता है मृत्यु। विशेष रूप से तो आचार्य भगवंतों ने कहा है कि मानो विनय विनाशनु। मान कषाय और अहंकार हमारे भीतर जो विनय का गुण है उसका पहले नंबर विनाश करता है, घात करता है। हमारे भीतर झुकने का भाव रह ही नहीं जाता और हम खाली रह जाते हैं। जैसे कि बर्तन भरने के लिए नदी के किनारे कोई जावे और बर्तन झुकने को तैयार न हुए तो भैया खाली लौट के आना पड़ेगा। वो तो जब झुकोगे, अपनी गर्दन झुकाओगे, तब पानी में डूबेगी और पानी भीतर आएगा। लेकिन हम अगर अकड़े रहें तो हमारे भीतर गुणवत्ता आएगी कैसे। हर व्यक्ति गलतियां करता है, एरर इज द ह्यूमन लिखा हुआ है, लेकिन टू कन्फेस टू फॉरगिव इज द डिवाइन। अगर मैं अपनी भूलों को कोई बताए तो स्वीकार कर लूं, और अपने से कोई भूल हो जाए तो उसे कन्फेस करूं, उसके लिए अपराध बोध महसूस करूं और दूसरे की गलतियों को विनय पूर्वक भूल जाऊं। दूसरा तो कहे कि भैया मेरी गलती हो गई और हमारे मुंह से निकले कोई बात नहीं, ऐसी हम उस जगह होते तो हमसे भी हो सकती थी, आपसे कोई विशेष, आप सुधारिएगा उसको। ऐसे विनय पूर्वक और अहंकार पूर्वक, अगर अहंकारी होगा और उसके सामने कोई विनय पूर्वक अपनी गलती सुधारने के लिए कहे, कहना मत भूल करके, वो आपकी गलती जान करके आपके वीक पॉइंट को फिर इमोशनल ब्लैकमेलिंग करेगा, वो दुगती रग पर हाथ रखेगा। जैसे कि आज संसार में अपन महसूस कर रहे हैं कि अपने भीतर अगर कोई कमजोरी है, किसी व्यक्ति को मालूम पड़ जाए और वो अहंकारी हो तो उस गलती को लेकर के तिरस्कार करेगा। अपन धर्म और धर्मात्मा का इसी तरह तिरस्कार करते हैं। छोटी बहुत अगर गलतियां सबके भीतर हैं, सो अगर मालूम पड़ जाती है तब उस व्यक्ति को सहन नहीं कर पाते, उसके सारे गुणों को एक तरफ रख देंगे, उसके एक अवगुण को ही इतना अधिक विस्तार करेंगे कि सारे गुण उस अवगुण में ढक जाएं। होना तो ये चाहिए कि जितने अवगुण हैं वे सब एक गुण हो अगर और उसको इतना विस्तार करें कि सारे अवगुण ढक जाएं और एक गुण अपने भीतर जो दिखाई पड़ रहा है दूसरे का वही हमारे भीतर भी आवे, ये दृष्टि अपने भीतर होनी चाहिए। हमें दूसरे के अवगुण देख करके थोड़ी अपने जीवन में अवगुण लाना है, हमें तो दूसरे के गुण देख करके अपने जीवन को गुणवान बनाना है। ऐसी दृष्टि अगर मन के भीतर आए तो विनय भाव, वरना हम अपना जीवन तो इस मान कषाय से प्रेरित होकर के जी रहे हैं भैया, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को इसी प्रकार से अपन कर्ता बन करके और जैसे मैं चला रहा हूं ऐसा चलाते, जैसे कि एक बैलगाड़ी चली जाती थी उसके नीचे छाया थी, सो एक बकरी वहां पर बैठ गई छाया में। अब थोड़ी देर में वो बैलगाड़ी चली, सो छाया भी उस बैलगाड़ी के साथ चली, सो बकरी भी उस छाया में चलने के उद्देश्य थे बैलगाड़ी के नीचे नीचे चलने लगी। थोड़ी देर में विचार आया उसको कि अरे नहीं, मैं अगर यहां से हट जाऊं तो बैलगाड़ी नहीं चल पाएगी, मेरे दम पर बैलगाड़ी चल रही। अब बताओ ऐसा मिथ्या विचार हमारे भीतर भी आ जाता है, भैया हमारे वजह से संसार चल रहा है तो हम जब नहीं रहते जब भी चल रहा हो तो, और जब हम नहीं रहेंगे तब भी चलेगा। मिथ्या है ये अहंकार, अपना अपना पुण्य पाप सब लेकर के आए हैं। क्या परिवार हम चला सकते हैं, क्या देश हम चला सकते, क्या समाज हम चला सकते, ऐसा भाव अपने भीतर आवे। हम तो सिर्फ अपने जीवन को ही विनयवान बना करके और गुणों से युक्त कर सकते, हम किसी के लिए यहां पर कर्ता बन करके और कुछ उपकार करना चाहे या अपकार करना चाहे तो निमित्त बन सकते हैं, लेकिन हम उपकार और अपकार तो उसके पुण्य और पाप के उदय में ही कर सकते। ऐसा विनय भाव अपने भीतर आवे। आज के दिन उत्तम मार्गों का दिन है, अपने भीतर भी ऐसे ही विनय भाव लाने का अभ्यास अपन को करना चाहिए। कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं तो अहंकार आएगा, और आज वर्तमान में तुलना करने के लिए, कंपेयर करने के लिए अपन बहुत उत्सुक हैं। हर चीज का, व्यक्ति का, वस्तु का, वस्तु की तुलना सो ठीक है, लेकिन व्यक्ति की भी अपन गुणवत्ता की अपेक्षा से तुलना करते नहीं, अपना क्राइटेरिया तुलना करने का अपने मन का बनाते हैं। किसी व्यक्ति के बड़े और छोटे होने की तुलना आप कैसे कर सकते हैं, उसके गुणों के आधार पर करें तो ठीक है, लेकिन हम अपने स्वार्थ के आधार पर बड़े और छोटे की कल्पना कर लेते हैं, यही हमारा अहंकार है। क्योंकि जिससे हमारा स्वार्थ सद रहा है उसे बड़ा साबित करके हम अपने स्वार्थ को पुष्ट कर लेते हैं। जो जितना फलवान है, जो जितना उदार है, विशाल हृदय जिसका है वो उतना बड़ा है। देखो कितना ऊंचा होता है खजूर का पेड़, लेकिन फल लागे अति दूर, बड़ी मुश्किल में फल लगते हैं और वो भी अपनी अप्रोच से बाहर रहते हैं। भले ही कहने को ऊंचा है, बड़े होने का अर्थ जो झुक करके आपसे मिला होगा, मानिए वो आपसे बड़ा रहा होगा, ये हरिवंश राय बच्चन ने लिखा। देखो अगर विचार करो तो जो जितना ऊंचा होगा उसको नीचे व्यक्ति से झुक कर कहीं मिलना पड़ेगा प्रणाम करने के लिए, सो ये तो है ही। और अगर गुणों में कोई बड़ा है तो वो भी अपने से कम गुणों वाले के प्रति भी दया का भाव रखेगा, विनय का भाव रखेगा। अपन करती नहीं है ऐसा, अपन अपने को बड़ा मान लेते और दूसरे को छोटा, छोटे बच्चे हैं। अरे भाई उनका भी तो सम्मान है, आप उनसे तू करके बोलेंगे वो भी आपसे तू करके बोलेंगे, और अगर आप उनसे जी करके बोलेंगे वो भी आपसे जी करके बोलेंगे, और आप करके बोलेंगे तो आपसे भी उत्तर में वो आप ही कहेंगे तुम कहां जा रहे, तू कहां जा रहा है। ऐसे तू तड़ाक की भाषा बोलते हैं अपन अहंकार वश, कहते जरूर है कि हम तो प्रेम की भाषा बोल रहे। अरे नहीं भैया, वाणी से मालूम पड़ जाता है कि आपके भीतर कौन से भाव हैं। अपन दूसरे के सम्मान की रक्षा नहीं करते हैं तो मानिए अपने भीतर भी विनय का भाव आ नहीं पाएगा। एक तो धर्मात्मा का तिरस्कार नहीं करना तो अपने भीतर विनय आएगी, और दूसरे किसी के सम्मान के लिए कभी पीछे नहीं हटना, सम्मान करने में उसके सम्मान के लिए उत्सुक रहना। एक गुण भी उसके भीतर है तो उसका भी सम्मान हो, मेरे से छोटा नहीं है, ऐसा विचार विनयवान के ही आता है। भगवान के गुणों का गान करता रहता है, भगवान की भक्ति करता है जो विनयवान होता है, ईश वंदना। क्योंकि और तो किसी की प्रशंसा अपन कर नहीं सकते, सो अपने भीतर प्रशंसा का भाव किसके प्रति आता, भगवान के प्रति। चलो भैया भगवान की ही प्रशंसा करो, भगवान के ही गुणगान करो, उससे तुम्हारे भीतर धीरे धीरे मान कषाय हटेगी और विनय भाव आएगा। सो आज तो भगवान के प्रति कर रहे हो, कल के दिन प्राणी मात्र के प्रति विनय का भाव धारण करना। ऐसा अपने भीतर भाव आवे तब विनय धर्म या मार्दव धर्म अपने भीतर आया। ऐसा अपन अपने अभ्यास से निर्णय ले सकेंगे, वरना तो जिंदगी हो गई पर्यूषण पर हमेशा मार्दव धर्म आता है। अपन वचन का भी सुन लेते हैं, वो प्रवचन भी सुन ले तो सांस्कृतिक कार्यक्रम कर नहीं पा रहे, नहीं तो खूब सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं। सो सांस्कृतिक कार्यक्रमों के नाम पर अब संस्कृति का पोषण करते, ऑर्केस्ट्रा बजता फिल्मी तर्जों पर और खूब गेट टुगेदर आते बहुत सारे लोग, छतें भर जाती पूरी। काय के लिए आए, वितरागता के लिए नहीं आए, मेरे राग रंग के लिए मैं आया हूं। यहां पर आपस में एक दूसरे से मिलना जुलना हो जाएगा, गेट टुगेदर। विचार करो क्या हम ऐसे में मृदुता धर्म को अपने जीवन में अंगीकार कर पाएंगे। ऐसे तो हमने इतने पर्यूषण कर लिए, हमने कभी अपने जीवन में कठोरता का त्याग करने और मृदुता को स्वीकार करने का भाव ही नहीं किया। दूसरे के द्वारा किए गए उपकारों के प्रति अपन ने कभी कृतज्ञता व्यक्त ही नहीं की। अपने को विचार आना चाहिए कि देखो इतने बढ़िया से अपन को सुनने मिल रहा है, माई जिसने इंतजाम किया है उसके लिए धन्यवाद। नहीं हमने तो पैसा दाए हैं जब तो लगाओ उन्हें, ये भैया सब चीजें पैसा से नहीं होत, भावना से होत, प्रेम से होती। अपने भीतर धन्यवाद का भाव तो आना ही चाहिए। पेंडाल जिसने लगाया, जिसके नीचे बैठ करके मैं आराम से अपना धर्म ध्यान करता हूं, इतनी द्रव्य धो करके मेरे लिए रखी, मैं पूजा तब तो कर पा रहा हूं। ऐसा एक एक काम के लिए अपने भीतर उपकार का भाव आ जावे तो देखिए कितनी कृतज्ञता आने से अपनी तो गुणवत्ता ही बढ़ गई, अपना कुछ घाटा नहीं हुआ। कृतज्ञता नाम का गुण और मृदुता अपने भीतर आपो आप दूसरे का उपकार स्वीकार करने से आ गई। सबसे ज्यादा तो जीवन में उपकार है मां का, और मोक्ष मार्ग में सबसे ज्यादा उपकार है गुरुजनों का और जिनवाणी मां का। देखो मां अगर कुछ काम कर रही हो नीचे और भैया जी ऊपर छोटी सी पट्टी पे पतंग लेके दौड़ रहे या पतंग लेने के लिए दौड़ रहे, तो किसकी झाती धड़कती है,
भैया जी की छाती झलकती है, छोटे से हैं लेकिन दौड़ लगा रहे हैं उत्ती सकड़ी पट्टी पे से, कि मां की छाती धड़कती है, मां बार बार कहती कि ए भैया समर करके तुम नीचे खेलो उतने से गिर पर हो। कितना उपकार था अपने ऊपर जब अपन बड़े हुए बचपन में इस तरह छोटी छोटी चीजों में संभाल करके, ऐसा कृतज्ञता का भाव अपने भीतर आता है? नहीं, हम तो पढ़े लिखे हो गए, बड़े हो गए, हमारी मताई तो पढ़ी लग तक नहीं है। लियो विनोबा ने लिखा कि मेरी मां बहुत सुंदर हो, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरी मां बहुत सुंदर है, मेरी मां बहुत ज्ञानवान हो, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरी मां बहुत विद्वान है, मैं तो मां के बारे में इतना ही करूं कहूंगा कि मेरी मां है, मुझे बहुत प्यार करती, मेरे प्रति हमेशा उसके अंदर सम्मान का भाव बना रहता है। अपन को ऐसे ही विचार अपने भीतर लाना चाहिए, मन वाणी और शरीर तीनों में अपने विनय आवे इसका प्रयत्न करना चाहिए। मन की विनय क्या है? अपने भीतर श्रेष्ठ विचार आवे, यही तो मन की विनय है। वाणी की विनय क्या है? किसी को अहितकारी वचन मैं ना बोलूं, अशुभ वचन मैं ना बोलूं, हमेशा प्रिय वचन और मधुर वचन बोलूं। प्रिय और मधुर वचन अकेले कानों से सुनने वाले प्रिय और मधुर वचन नहीं, उसके लिए उपकारकारी कटु वचन भी हो, लेकिन कटुता से ना कहे गए हो, सहज भाव से बहुत प्रेम से भर करके कहे गए हो। सो तो मां कहा करती है कि देखो हम तुम्हें पिटाई लगाएं तुम ऐसा करोगे तो, लेकिन बेटा हंसता रहता है कि मां मार थोड़ी रही है, मारने के लिए धमकी भी दे रही तो मारेगी नहीं, प्रेम तो उसके भीतर बहुत है मुझे सुधारने के लिए ऐसा कर रही है। वरना तो पहले, अब तो भैया चूल्हे उले है नहीं, अब तो गैस आ गई, नहीं तो पहले चूल्हे जलते रहते थे और अपन ने गड़बड़ कुछ किया, सो मां ने फौरन कहा कि निकारे आगी और लकड़ी खिसकाई उनने, तो उस समय कैसा लगता था कि लगाई देगी लकड़ी, तो डर जाते थे, नहीं करते थे उपद्रव। और वो ही मां है जो कि अगर जरा सा जल जाए उंगली में तो सारे दिन चिंतित रह करके और अपने मुंह में उंगली डाल करके शीतलता पहुंचाने के लिए उत्सुक रहती, भले ही मुंह की वजह से है भैया, लेकिन ऐसा ही अनुराग प्राणी मात्र के प्रति अपने जीवन में आ जावे कि रिवेंस ऑफ लाइफ, जहां जहां जीवन है वहां उसका सम्मान है, ऐसा विचार ऐसा मधुर भाव वाणी में भी और मन में आ जावे और कर्म भी अपने दूसरे के लिए अहितकारी ना हो, शुभ हो। इस तरह शरीर से भी अपन विनय भाव ला सकते हैं, शरीर से विनय और कठोर भाव तो स्पष्ट दिख जाता है, कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति के अंदर कितनी श्रद्धा और विनय है ये तो शरीर की क्रियाओं से, उसके एक्शन से ही देखने में मालूम पड़ जाती है, और अकड़े हुए व्यक्ति की अकड़ अपने आप मालूम पड़ जाती है उसके बोलने से, उसके भावों से और उसकी क्रियाओं से। एक बार एक बाबा जी थे, तीनों आ जाएंगे इसमें विनय। बाबा जी रास्ते से चले जाते थे, सो एक व्यक्ति बड़ा उपद्रवी था, दुर्जन था, अहंकारी भी था कि और तो सब हमारे लिए बहुत मानते हैं, जी बाबा जी हैं, जी हमसे कुछ नहीं मांगते कभी, जई बड़ी तकलीफ। हां अहंकारी को बड़ी तकलीफ कि सब हमारे मातहत चले, हमसे पूछ के काम करें, ये बड़ी मुश्किल होती। सो बाबा जी तो अपने में लीन और निकलते रास्ते से, सो उसने जब कुछ नहीं बना कहते तो ढेर सारा कचरी का टोकना भर करके बाबा जी को बैठ डाल दिया। अब एक आध दिन की बात हुए तो ठीक है भाई, जब भी बाबा जी वहां से निकले सो भरा हुआ कचरे का टोकना उनके ऊपर से डाल दे, बाबा जी कुछ नहीं मुस्कुराते हुए और कचरा अलग करके निकल जावे, रोज का क्रम हो गया। एक दिन ऐसा हुआ कि कचरे का भरा हुआ टोकना किसी ने डाला ही नहीं बाबा जी के ऊपर, सो बाबा जी ने सोचा कि शायद नींद मींद लग गई होगी, कहीं बाहर गया होगा, भूल गया होगा आज, बताओ। उपद्रव नहीं होने पर विनयवान सोच रहा है कि उपद्रवी व्यक्ति आज क्यों नहीं उपद्रव कर रहा है। देखो, दूसरा दिन निकला कचरा नहीं फेंका, अब तो थोड़ा मन में संदेह का भाव हुआ कि क्या बात है, बाहर चला गया क्या, रोज कचरा मेरे ऊपर डालता था, आज तो डाला ही नहीं, दो दिन हो गए, तकलीफ में है क्या वो। अब ऐसा विचार दया का मन में आने लगा, जिसके पास श्रेष्ठ विचार हैं वही ऐसा सोच सकता है, नहीं तो ये तो सब बेकार बातें लगेंगी। प्रवचन में बार अच्छी लगने वाली बातें हैं, जीवन में भी अच्छी लग सकती हैं अगर हम इनको जीवन में उतारें तो। तीसरे दिन तो उस बाबा जी से रहा नहीं गया, एक व्यक्ति से पूछा कि इस घर में जो रहते थे उनका क्या हुआ, कहीं बाहर गए हैं क्या, ताला तो लगा नहीं है दरवाजे पर। तो उस व्यक्ति ने समाचार दिया कि तीन दिन हो गए, आज तीसरा दिन है, उस व्यक्ति को बहुत अधिक तकलीफ है, बहुत पीड़ा है, अस्वस्थ हो गया है। बस इतना सुनना था और बाबा जी दरवाजा खोल करके ऊपर पहुंच गए और उस व्यक्ति का स्वास्थ्य पूछने लगे। वो तो घबरा गया कि एक तो वैसे ही मैं अस्वस्थ हूं, ऐसे धोखे में ना रहे अपन कि मैं अपने अहंकार से सारी दुनिया जीत लूंगा। अरे नहीं भैया, जिसने अहंकार किया वो पैरों के नीचे कुचल गया, उस पर से लोग निकल गए। उस व्यक्ति ने ऐसा विचार किया कि मेरा उपद्रव ना हो जाए, लेकिन बाबा जी वहीं पर पलंग के पास बैठ गए हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, कहे कि इस व्यक्ति का स्वास्थ्य जल्दी से ठीक हो जाए, ऐसी दुआ भगवान से मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। उस व्यक्ति के तो आंसू आ गए, गदगद हो गया वो कि मैंने तो आपका इतने दिनों तक कचरा फेंक करके असम्मान ही किया, तिरस्कार ही किया, लेकिन आप मेरे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अद्भुत है। श्रेष्ठ विचार, श्रेष्ठ वाणी और श्रेष्ठ कर्म, यही हमारे जीवन में विनय ला सकते हैं। भैया अपन जो है अपने मन वचन काय में जितना जिससे बने एकदम तो आहे ने 100%। अपन तो ये सोच के चल रहे कि मैं तो अभ्यास करूंगा, 0.1% भी मेरे भीतर तीनों चीजों में अगर विनय आती है तो मेरा 10 लक्षण में आमार्दव धर्म मनाना सार्थक हो गया। और अगर मेरे जीवन में जो अकड़ है, जो कठोरता है, वो जरा भी परिवर्तित नहीं होती तो मुझे अभी अभ्यास और करना पड़ेगा। ऐसा विचार करके अपन मृदुता का और विनय का अभ्यास करें, जिससे कि हमारे भीतर भी विनय का भाव मन वचन काय में आवे और हम भी अपने जीवन को अच्छा बनाएं। बोली आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि।
हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यज्ञ नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला है। विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हूँ, अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोता हूँ। हो अर्धनिशा का सन्नाटा वन में वनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो, करते तप शैल नदी तट पर तरु तल बरसा की घड़ियों में समता
रस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में
अंतर ज्वाला हरती वाणी मानो झड़ती हो फूल झड़िया
भव बंधन तड़ तड़ टूट पड़े खिल जावे अंतर की कलियां
तुम सादानी क्या कोई हो जग को दे दी जग की निधिया
दिन रात लुटाया करते हो शम शम की अविनाश मणियां
हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम
हे शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम
उदक चंद्र बड़ी करने में जो हम जबरदस्ती अपनी योग्यता के बिना पुरुषार्थ करते हैं तो वो ये होता है कि दूसरे की मिटा करके अपनी बड़ी होती उसके बिना तो होती नहीं वरना अपनी लकीर बड़ी करने वाले को अहंकार करने की आवश्यकता नहीं आएगी वो तो अपने आप में सेल्फ सेटिस्फाइड रहेगा इसलिए जब जब भी हमें अपनी योग्यता से अधिक सम्मान की इच्छा अपने मन में जागृत हो तो सावधान होना चाहिए और अपनी योग्यता के सम्मान की इच्छा जागृत हो तब भी सावधान रहना चाहिए तीसरी एक अवस्था और है जिसमें कि हम अपनी योग्यता का सम्मान तो नहीं चाहते लेकिन हम अपमान भी नहीं चाहते वो अवस्था है स्वाभिमान की वो एक बार फिर भी ठीक है लेकिन वो स्वाभिमान भी कब अभिमान बन जाता है इसकी सावधानी रखना कई लोग ये कहते हुए पाए जाते हैं कि हमारा भी तो कोई स्वाभिमान है तो इसका मतलब है कि ये आपका अभिमान है ये कहना पड़ा आपको हाँ ये बहुत सावधानी अभिमान और स्वाभिमान के बीच बड़ी बारीक सी लाइन है और उसमें हम अगर गड़बड़ा जाते हैं तो हम अभिमान और अहंकार में उतर जाते हैं फिर हमारी श्रद्धा खत्म हो जाती है और एक स्थिति बहुत अच्छी है जो निराभिमान की स्थिति है निरंकार की स्थिति है जिसमें न सम्मान की इच्छा है न अपमान होने पर कोई संक्लेश है वो तो कोई विरले ही जीव जिसकी दृष्टि वाकई में समीचीन हो गई है उसको सम्मान और अपमान से कोई फर्क नहीं पड़ता है हम वास्तव में वही अवस्था पाना चाहते हैं उसके लिए ही हमारा अपना जो भी हम अपने जीवन में करते हैं उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए करते हैं ये हमें ध्यान में रखना चाहिए अहंकार कितने तरह से हमारे भीतर प्रवेश करता है कितने रूपों में प्रवेश करता है ये हमें थोड़ा सा देख लेना है ताकि जब अहंकार हमारे भीतर प्रवेश करे तब हम उसे समझ सकें अपना अहंकार अपने आप को ही समझ में नहीं आता दूसरा अहंकार कर रहा है तो हम कहते हुए पाए जाते हैं कि देखो कितने अहंकारी हैं कितना मान है इनको लेकिन अपन जब मान करते हैं अपन जब अहंकार करते हैं तो अपने को नहीं समझ में आता अपने को लगता हम ठीक कर रहे हैं इसलिए जब भी हमारे भीतर ये अहंकार प्रवेश करे और हमारे मन को घेरे हमें सावधानी रखनी चाहिए जैसे बच्चे लोगों को कहा जाता है कि कोई प्रयोग कर रहे हो तो ऑब्जर्वेशन के साथ साथ प्रिकॉशंस भी ले लेना सावधानियां रखना ताकि तुम्हें प्रयोग के ठीक ठीक निष्कर्ष मिल सके अपने जीवन में भी जब अपन एक प्रयोग कर रहे हैं कि मेरी श्रद्धा मेरे ही अहंकार से नष्ट हो जाती है जैसे कि किसी को दीपक हाथ में मिल जाए जला हुआ तो कई बार ऐसा होता है कि वो बाहर की हवाओं से नहीं बुझता हमारी ही सांसों से बुझ जाता है ये बड़ा सावधानी का मामला ऐसा ना हो कि वो दीपक जो श्रद्धा की रोशनी हमें मिली है वो हमारी ही सांसों यानी हमारे ही अहंकार से बुझ ना जाए इसलिए हम समझें उस चीज को कि हमारे भीतर किन किन रूपों में अहंकार आ सकता है आचार्य भगवंतों के चरणों में बैठने पर वे हमें बताते हैं कि वैसे तो अहंकार के बहुत रूप हैं लेकिन 8 रूपों में अहंकार हमारे जीवन में प्रवेश करता है ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बल वृद्धिम तपो वस्बपु अष्टावाशित मानित्वम स्मय माहुर गतस्मय जो इसमें यानी अहंकार से जो पार हो गए हैं उन्होंने ये 8 भेद बताए हैं हमारे भीतर अहंकार आने के। इनके माध्यम से हमारे मन में अहंकार आ सकता, हमारी विनय वो नष्ट हो सकती है, हमारी श्रद्धा उससे दूषित हो सकती है। इसलिए जिसकी दृष्टि निर्मल है, जो अपने जीवन को बहुत ऊंचा उठाना चाहता है, अच्छा बनाना चाहता है, वो इन माध्यमों से होने वाले अहंकार से बचे। ज्ञान का अहंकार बहुत जल्दी आता है, इसलिए सबसे पहले लिखा है ज्ञानम। ज्ञान के माध्यम से 4 बातें अपन ज्ञान की सीख लेते हैं तो दूसरे को अज्ञानी साबित करने का मन होने लगता है, ये सबसे खतरनाक चीज। हमारे अपने ज्ञान से हम अपना आत्म कल्याण कर लेंगे, वो ज्ञान तो सम्यक ज्ञान कहलाएगा, लेकिन होता यह है कि 4 बातें धर्म की या 4 बातें हम कहीं से कोई ज्ञान कर की ज्ञान की उपलब्ध कर लेते हैं तो हम फिर 4 लोगों के बीच ऐसा प्रदर्शित करते हैं कि जैसे हमसे ज्यादा कोई ज्ञानी नहीं है और तुमसे ज्यादा कोई अज्ञानी नहीं, हमें जानत सब कछु, तुमका जानत कछु, पढ़े लिखे हो नहीं है। ऐसा मन में कहते नहीं है लेकिन प्रदर्शित अपने अंदर यही करते हैं, सामने वाले को डिफीट करने के लिए, उसकी बात को तर्क देकर के नीचा करने के लिए हम अपने ज्ञान का प्रयोग करते हैं। हमारे अपने सयोगसम का प्रयोग अगर हम देखें दिन भर में तो हम पाएंगे कि हम अपने ज्ञान से दूसरे का तिरस्कार ही करते हैं, दूसरे को नीचा ही दिखाते हैं। यही तो हमारे ज्ञान का अहंकार है और क्या। जैसे कि कोई अगर किसी को कहे कि ये चीज ऐसी नहीं है, अच्छा आर्यन दो जैसे तुम्हें जाना तो हमें सही मालूम है, ये भाव आ जाता कि नहीं आ जाता। कोई कुछ भी कहे, थोड़े से आहार देते समय ही कोई कहे कि थोड़ा सा यहां से आप, हमें मालूम है हमने बहुत आहार दिए हैं, तुम्हें नहीं आता कि वो आ गए, ऐसा जल्दी से अपन कह देते। कोई रास्ते से अपन को ठीक ठीक स्थान बताएगा कि भैया ऐसे में बैठो, ऐसे बैठ जाओ, तब भी अपने मन में आ जाती ये चीजें। ये क्या चीज है? ये अहंकार का रूप है, वो ज्ञान के रूप में हमारे अंदर प्रवेश कर जाता। हमें विचार क्या करना चाहिए इस अहंकार को दूर करने के लिए? आपको मेरी आवाज ठीक से सुनाई पड़ रही? पानी के बीच में भी मुझे अपनी आवाज नहीं सुनाई पड़ रही असल में। हाँ, आकाश जी ने बहुत तेज बारिश में एक बार आहार जी ने प्रवचन बंद कर दिया था, मुझे वो घटना याद आ रही, इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया। क्योंकि उन्होंने, जब हम लोगों ने पूछा कि आपने बंद क्यों कर दिया, तो बोले हमें अपनी जो सहज आवाज है उससे ज्यादा तेज बोलना पड़ा तो अपने ही प्राणों का घात होगा, इसलिए बंद कर दिया। तो मैं इससे ज्यादा तेज नहीं बोल सकता, अगर आपको नहीं सुनाई पड़ रहा है तो मुझे बता दें, ठीक है, चलने दें। हमें ये विचार करना चाहिए कि जैसे अपन ने जीवन में अपने एमए किया, मान लो अब एमए किया अपन ने और उसके बाद पूरा जीवन अपना व्यतीत हो गया और अपना जीवन समाप्त भी हो गया, अब अपन दूसरी जगह चले गए, दूसरा जन्म हो गया, तो क्या वो ज्ञान साथ में जाता है? बिल्कुल नहीं जाता। अगर साथ में जाता होता तो फिर आनार का फिर से नहीं करना पड़ता, फिर तो अपन ये कहते कि एमए तो पहले से पढ़ के आया, आपका पीएचडी कर है, ऐसा होता है क्या? आज तक कोई भी इधर इधर कितने भी पढ़े लिखे हो और मरण के बाद में फिर से उत्पन्न हो तो आनार से शुरू करना पड़ता। उस छोटे से सयोगसम ज्ञान का मैं अहंकार करूं, ऐसा विचार अपने भीतर आना चाहिए कि अरे इतना थोड़ा सा ज्ञान मेरे को है जो कि मेरे साथ भी नहीं जाता है, और फिर मैं उसका अहंकार करूं और अहंकार के चलते मैं दूसरे के ज्ञान का तिरस्कार करूं, ये तो मेरे लिए ठीक नहीं है। अगर ऐसा भाव हमारे भीतर आ जाए तो ये अहंकार ज्ञान का अपने आप नष्ट हो जाता और हमारी ज्ञान के प्रति, सम्यक ज्ञान के प्रति श्रद्धा बनी रहती। जब जब भी ध्यान रखना, जब जब भी दूसरे के अच्छे ज्ञान की बात सुनकर के उसकी प्रशंसा करने का भाव नहीं होता तो ये भी अहंकार ही है। ऐसा होता है कई बार कि हम कहीं से कोई अच्छा ज्ञान, सम्यक ज्ञान, उसकी चर्चा कर रही है तो हम उसकी प्रशंसा नहीं कर पाते हैं, बल्कि हम ये इस मौके की तलाश में रहते हैं कि कैसे ये इसका बोलना बंद हो और मैं इन सब चीजों को अभी काट करके और ठीक कर दूं। ये कभी नहीं करना चाहिए, ये सम्यक ज्ञान का अनादर है। फिर हमारा सम्यक ज्ञान धीरे से छूट जाएगा। इसलिए जहां पर भी सम्यक ज्ञान की चर्चा हो उसका अनादर नहीं करना, उसका तिरस्कार नहीं करना, और जो ज्ञानवान है उनका भी तिरस्कार नहीं करना। तब जाकर के हमारा ज्ञान वास्तविक ज्ञान कहलाएगा और वो केवल ज्ञान में कारण बनेगा। आचार्य भगवंतों ने लिखा, जो विनय पूर्वक निरलस होकर अर्थात आलस छोड़कर इस जीवन में इस थोड़े से सर्वोपशम ज्ञान का अभ्यास करता है, उसका ये थोड़ा सा ज्ञान भी आगामी जीवन में केवल ज्ञान का कारण बनता है। लेकिन विनय पूर्वक होना चाहिए, पूरी श्रद्धा के साथ और विनय के साथ में ज्ञान को हम हासिल करें तो हम उस ज्ञान के अहंकार से बच सकते हैं। मैं आपको एक घटना सुनाता हूं। आचार्य महाराज के जब आगम वाचना आचार्य महाराज के सानिध्य में 1980 में और शुरू हुई थी, सागर में पहली आगम वाचना हुई षटखंड आगम की, और बड़े बड़े विद्वान जिनमें से तो अब कोई भी नहीं रहा उस समय, वो सारे 6-8 विद्वान तो सबसे बड़े विद्वान थे और बाकी तो 50-100 विद्वान, उनमें से भी अब बहुत थोड़े बचे हैं। वो जो बड़े विद्वान थे वो तो नहीं रहे। वहां पर उस चर्चा के बीच में एक शब्द अटक गया, उसका मेन स्क्रिप्ट में क्या अर्थ होना चाहिए ये किसी को नहीं सूझ रहा, ऊहा पोह होता रहा। आचार्य महाराज भी चुपचाप सुन रहे हैं, सारे विद्वान अपने अपने ओपिनियन दे रहे हैं कि इसका अर्थ ये होना चाहिए, वो कह रहे हैं इसका अर्थ यहां तो ये होना चाहिए। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ क्लियर नहीं हो रहा। वहीं पर बैठी हुए थी जिनेन्द्र वर्णी, सब परिचित होंगे जिनेन्द्र वर्णी से, 3 वर्णी प्रसिद्ध हुए अपने यहां पर, गणेश प्रसाद वर्णी, जिनके मैं उदाहरण आपको उनकी सरलता की सुनाया करता हूं, बड़े वर्णी जी कहलाते थे, फिर मनोहर लाल वर्णी, और फिर तीसरे नंबर पर ये जैनेन्द्र वर्णी। उन्होंने कोश लिखा है, जैनेन्द्र शब्द कोश, भारतीय ज्ञानपीठ से 4 वॉल्यूम, इतना 150 ग्रंथों को अध्ययन करके 17 साल में जिसे उन्होंने कंपाइल किया है, संकलित किया है, रीअरेंज किया है, जिसको कि आज कई लोग जो है देख भी नहीं पाते हैं, उसमें से ढूंढ नहीं पाते कि कौन सी चीज कहां मिलेगी, वो उन्होंने इतना अधिक ज्ञान, उनका सर्वोपशम ज्ञान, जिससे उन्होंने सम्यक ज्ञान की आलोड़न करके वो रचना करी, वो भी वहीं बैठे हैं लेकिन चुप है। मजा देखिएगा। अब अचानक आचार्य का ध्यान चला गया तो आचार्य ने धीरे से कहा कि वर्णी जी, आपने तो कोश लिखा है, आपको तो इस शब्द का अर्थ किस ग्रंथ में कौन सा है ये सब मालूम होगा। तो उन्होंने हाथ जोड़ लिए और फिर क्या बोले कि आपकी आज्ञा हो तो कहूं। आचार्य ने कहा हाँ, बहुत बहुत आप बोलिएगा। तो उन्होंने उसका अर्थ जो अलग अलग ग्रंथों में था वो सहर्ष बता दिया। जब वो अर्थ बताया तो सब समाधान हो गया। तो उसमें से जो एक पंडित जी थे वो एकदम बोले, अब जब आपको मालूम था तो हम लोग आधे घंटे से परेशान हो रहे थे, पहले क्यों नहीं बता दिया आपने। तो क्या बोले, इतने बड़े विद्वान और इतने बड़े आचार्य महाराज के सम्मुख में क्या उस पर बिना कहे और अपने बीच में ज्ञान को बताऊं। ये है ज्ञान के प्रति विनय, नहीं तो अदोजल गगरी छलकत जात, 4 बातें पता नहीं लगी और चर्चा कहीं चल रही तो बीच में शांत नहीं रह सकते, हमें मालूम हम बताएं ये चीज ऐसी। इससे बचना चाहिए हमें, बहुत ज्ञान को हासिल करके और अपने भीतर और धैर्य और अपने भीतर विनय बनाए रखनी चाहिए। और सम्यक ज्ञान और सामान्य ज्ञान की विशेषता यही है, अंतर दोनों में यही है कि जिसे सम्यक ज्ञान होता है उसे अहंकार ना आकर के ये लगता है कि मेरा ज्ञान तो बहुत थोड़ा सा है, उस केवल ज्ञान की अपेक्षा से तो यह अत्यंत अल्प ही है। अपनी अज्ञानता का एहसास होता है अगर सम्यक ज्ञान हो जावे तो, और भौतिक ज्ञान होता है तो अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी मानने का अहंकार हमारे भीतर प्राप्त उत्पन्न हो जाता। जब जब भी हम सम्यक ज्ञान का अभ्यास करें तो भैया ये अपने भीतर देखते रहें कि हमें तो वास्तव में गौरव इस बात का होना चाहिए कि मेरा स्वभाव तो केवल ज्ञान का है जो कि शायद ज्ञान है, ये तो थोड़ा सा मुझे मति शुद्ध ज्ञान हुआ है वो तो शायद सम्यक ज्ञान है। मैं आपसे ज्ञान के अहंकार की बात करूं, कैसे अहंकार से हमारा ज्ञान ढक जाता है। मेरे अपने जीवन की घटना आपको सुनाता हूं। सन 1991 में सपना चतुर्मास में, और जब हम लोग डिस्कशन करने बैठते थे शंका समाधान करने, तो इतवार का दिन था और मेरे हाथ में इतनी ढेर सारी पर्चियां थी, प्रश्न थे। मैं एक 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 प्रश्न का जवाब देता चला जा रहा था बिना रुके हुए, और उतने में एक पर्ची आई। मैंने उसे उठा करके जैसे ही पढ़ा, उसमें लिखा था कि अद्भुत है आपका ज्ञान, आप हर प्रश्न का बिल्कुल टू द पॉइंट और लगातार जवाब देते जा रहे हैं, लग रहा है कि सरस्वती मानो आपकी जिह्वा पर आके बैठ गई। ऐसा वो उनका उन्होंने प्रश्न नहीं था, उन्होंने प्रशंसा लिख के भेजी थी। मेरा ध्यान गया, मैंने पढ़ा तो मेरे अंदर भी क्षण भर को ये लगा, ईमानदारी से क्षण भर को ये लगा कि हां मेरा ज्ञान तो है ही। आप आश्चर्य करेंगे कि उसके बाद वाले प्रश्न का उत्तर मुझे 30 सेकंड लग गए आने में, जबकि एक भी प्रश्न सामने आते ही उत्तर आधा प्रश्न पढ़ करके मैं दे रहा था, और फिर पूरा प्रश्न पढ़ने के बाद 30 सेकंड बाद भी मुझे उसका उत्तर नहीं आ रहा। अपनी गलती तुरंत समझ में आई और मेरी आंख भीग गई। आचार्य महाराज को स्मरण किया कि मैंने व्यर्थ अहंकार किया, और उसके बाद फिर जो उनके तय उत्तर आना शुरू हो गए। ये क्या चीज थी, क्षण भर के अहंकार ने ज्ञान के ऊपर पर्दा डाल दिया। हमें बहुत सावधानी रखनी चाहिए, सम्यक ज्ञान का अभ्यास करते समय अहंकार नहीं करना। अगर आने लगे तो उसको जीतने का प्रयत्न करना। जीतने का सीधा उपाय है कि याद कर लेना, गुरुजनों से मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई है, मेरा अपना इसमें क्या है, आचार्य भगवंतों का उपकार है जिनके वजह से और हमें दो बातें अपने कल्याण की सीखने मिली हैं, इसका क्या अहंकार करना, इसमें तो और विनय आनी चाहिए। ऐसा विचार अपने मन में आ जावे तो इस अहंकार से बच सकते हैं। पूजा जैसे ही यश ख्याति मिलने लगती है तो हमारे पैर फिर ठीक नहीं पड़ते जमीन पर, इसलिए आचार्य भगवंतों ने दूसरे नंबर पर लिखा कि जब श्रद्धा हमारे भीतर उत्पन्न हो जाए, हम अपने जीवन को अच्छा बनाने लगे, तब सावधानी रखें कि संसार में मिलने वाली थोड़ी थोड़ी सी पद प्रतिष्ठा और ख्याति लाभ इत्यादि का अहंकार मत कर लेना, क्योंकि कंचन कामनी छोड़ना जितना आसान है, ख्याति और पूजा और लाभ की आकांक्षा छोड़ना उतना ही कठिन है। ये इस कठिनाई को हम आसानी से हासिल कर सकते हैं ख्याति पूजा लाभ में ना पड़ करके। आज वर्तमान में अपन देख रहे हैं कि क्या क्या चीजें उसी थोड़ी सी ख्याति के लिए, वो भी ज्यादा समय तक नहीं टिकती है, और उसके लिए क्या क्या चीजें, और नाम हम उनको देखते हैं प्रभावना का, प्रभावना नहीं, अपनी ख्याति का भाव कहीं ना कहीं पीछे छिपा रहता है। प्रभावना तो धर्म की होती है, लेकिन हम उस प्रभावना के बहाने अपने ही कहना चाहिए प्रशंसा का नेम एंड फेम, ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे जाने और ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे माने, ये जो हमारे भीतर का भाव है वो अहंकार, फिर इसके चलते क्या होता है, फिर कभी भी हम दूसरे की यश और ख्याति को बर्दाश्त नहीं कर सकते। फिर हम वैसा ही करने की कोशिश करेंगे जैसे कि कोई और किसी माध्यम से यश और ख्याति पाने की कोशिश कर रहे हैं तो हम भी वही उपाय करके और स्वयं ख्याति पाने की कोशिश करेंगे। ये चल रहा है, किसी से छुपा नहीं है, सबकी अपनी कोशिश है। इससे क्या मालूम पड़ता है? इससे मालूम पड़ता है कि कहीं ना कहीं अभी हमारे दृष्टि में उतनी निर्मलता नहीं है। बहुत सावधानी रखना। यश और ख्याति, आचार्य श्री कहते कि खाई के समान है। ख्याति क्या है? वो तो खाई है। एक बार गिरे तो फिर ऊपर आना बहुत मुश्किल होता है, जैसे कोई खाई में गिर जाता है। ये सावधानी। अब यश और ख्याति किसी भी माध्यम से मिल सकती है। धन पैसा खूब हो जाए, अच्छा बढ़िया मकान बना ले गृहस्थ, तब उसके लिए भी अहंकार आ सकता है। वो उसके लिए अहंकार अपने उस धन पैसे का आ सकता है। मुनि महाराज के लिए अपनी जो प्रशंसा है वो सुनकर के अहंकार आ सकता है। सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है, निंदा से भी ज्यादा खतरनाक है प्रशंसा। आप ऐसा नहीं समझना कि निंदा ही खतरनाक है। निंदा से संकलेश होता है लेकिन प्रशंसा से अहंकार आता है। और फिर अगर एक बार प्रशंसा हो जाए और फिर दूसरी जगह नहीं हो गए तो बड़ा भीतर भीतर मन संकलेशित होता, कहते तो कछु नहीं हो रही, होते तो इतनी भाई थी। अरे बहुत बहुत झगड़ा है उसका। मैं तो बहुत समय से ये चीज अनुभव में देख करता हूं। अगर एक बार ये आदत बन गई कि मेरी सभा में तो कम से कम 10-25 हजार लोग हो तब मैं बोलूं, तो फिर उसके बाद अगर 10-25 है तो फिर भीतर भीतर बड़ा संकलेश होगा, फिर डमरू बजाना पड़ेगी जोड़ने के लिए। हां ये बहुत स्पष्ट बोल रहा हूं तो थोड़ा आप गलत तो नहीं समझेंगे, मत समझिएगा। अब तो आपके साथ ही रहना है मुझे, तो आप ही गलत समझेंगे तो कैसे काम बनेगा बताइए। ये ऐसी चीजें हैं जो अपन अपने अंदर अनालाइज करें, किसी से कहने थोड़ी जा रहे हैं। अपन अपने भीतर देख रहे हैं कि हां सचमुच कैसे कैसे भाव आ जाते हैं। हमें इस ख्याति पूजा लाभ से बचने के लिए हमेशा उपाय करते रहना चाहिए। वास्तव में तो देखा जाए तो पूजा किसकी होती है? पूजा तो होती है अरहंत सिद्ध पद की। मैं वो पद प्राप्त करूं, मैं वो प्रतिष्ठा प्राप्त करूं, आत्मस्थ हो जाना, अपने आप में प्रतिष्ठित हो जाना, वो तो अरहंत और सिद्ध अवस्था में ही होगा। मुझे उसका गौरव होना चाहिए क्योंकि मैं उससे प्राप्त कर सकता हूं, उस प्रतिष्ठा को, उस पद को प्राप्त कर सकता हूं। ये छोटे मोटे से प्रशंसा और पद मिलने पर मैं क्यों व्यर्थ में अहंकार करूं और उस अहंकार के चलते दूसरे का तिरस्कार करने का भाव आ जाए? ये तो मेरी श्रद्धा को मलिन बनाने वाली चीजें हैं। पूजाम ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम। कुल कहलाता है वो अपने, मैं भूल जाता हूं इसमें, पिता के वंश को कुल कहते हैं और माता के वंश को जाति कहते हैं। ऐसा कई बार होता है कि अपने पिता के कुल में या कि पिता के वंश में या माता के वंश में कोई बहुत बड़ा व्यक्ति हो तो हम उसे लेकर के भी अहंकार कर लेते हैं। इससे ही बचना चाहिए। हम तो ऊंचे कुल के हैं। ऊंचा कुल कौन सा है? जहां रत्नत्रय की परंपरा है। तब फिर अहंकार करने की आवश्यकता क्या है? अपने सौभाग्य से तो अपने आप को और अधिक गौरवान्वित करना चाहिए, अहंकार थोड़ी करना चाहिए। हम उस परंपरा के हैं जो तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की है। हम तो उस कुल और उस जाति के हैं। ये छोटी छोटी सी जो जातियां हमने बना ली हैं, जो कुल बनाए हैं हमारे अपने संसार में, उनका क्या अहंकार करना, क्या ऊंचा कुल और क्या नीचा कुल। जिसका आचरण खोटा है उसका कुल और जाति सब नीचा है, और जिसका आचरण ऊंचा है उसका कुल और जाति, और जिसका आचरण ऊंचा है वो अहंकार काय को करेगा? अहंकार करना तो अपने आप को नीच कुल की तरफ ले जाना है। परात्म निंदा प्रशंसे सत्सद्गुणों चादणोद भावने च नीचैर गोत्रस। जब जब मैं अहंकार करूंगा तो मैं नीच गोत्र का बंद करूंगा, मैं स्वयं ही नीचा हो जाऊंगा। ये सावधानी अपन कुल और जाति को लेकर के, जो अपने अंदर अहंकार हो जाता है, और दोनों चीज साथ में लगाते चलना। मजा यह है कि जैसे ही हमें अपने कुल जाति का अहंकार होता तो हम दूसरे का तिरस्कार करते हैं, उसको नीचा मानते हैं। अरे तुम्हारा कुल तो बहुत नीचा है, आज ये वर्तमान में बहुत तेजी से देखने में आता है। हम ये ध्यान रखें हमेशा कि कुल और जाति तो रत्नत्र की परंपरा से और आचरण की उत्कृष्टता से निर्धारित होती है, इससे निर्धारित नहीं होती कि कौन कहां पर उत्पन्न हुआ है। अगर वहां रत्नत्र की परंपरा है आज वर्तमान में, अब यहां तो नहीं है वैसा, यहां दूसरे ढंग का है जाति और कुल का। वैसे तो उधर हम गए राजस्थान वगैरह में, आचार्य भी वहां पहले रहे तो आचार्य हमेशा सुनाते हैं कि वहां पर अब कोई कह रहा खंडेलवाल, कोई पोरवाल, पल्लीवाल, बाकलीवाल, कासलीवाल, अरे बहुत सारे बाल बाल। आचार्य कहते कि सब बाल हटा दो ताकि बन जाए एक हॉल, तब एक साथ सब बैठ सकें। बाल मतलब दीवाल भी होता है। ये जाति और कुल की ये जो भेद रेखा हमने बना के रखी, जबकि सब रत्नत्र की आराधना करने वाले लोग हैं और ऊंचे कुल के हैं, क्योंकि हमने अपने आचरण को ऊंचा उठा रखा, इसलिए हम ऊंचे कुल के हैं। और ऊंचे कुल में पैदा भी हुए हो और आचरण खोटा हो गए तो वो कोई काम का नहीं है। इसलिए ऐसा विचार करके और हमें इस कुल और जाति के अहंकार से बचना चाहिए। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलम, कौन सा बल होना तो चाहिए, आत्मबल, लेकिन आत्मबल की जगह हम शरीर के बल का अहंकार कर लेते हैं। थोड़ा ही हमारे भीतर शरीर की सामर्थ्य होती है तो हम अपने आप को बहुत बलशाली समझ करके और दूसरे निर्बल व्यक्ति को दबाने की कोशिश करते हैं। बल धन और संपत्ति का भी होता है, पद और प्रतिष्ठा का भी बल होता है, जिसके कारण हम दूसरे को और प्रेशराइज करते हैं, वो सब भी हमारा अहंकार की है। हमें अपने आत्मबल को पहचानना चाहिए, जिसके माध्यम से कि हम अपने जीवन को ऊंचा उठा सकें। तपो वपु, थोड़ी सी तपस्या कर ली, अभी आने वाले 10 लक्षण पर्व, हाँ आपको पहले से ही बता दे रहा हूं कि क्या क्या संभव है होना, आप सावधानी रखना उससे बचने की, नहीं तो चल रहा है तो वो तो चले गई जो चल रहा है। क्या करेंगे, हो सकता 10 दिन का उपवास करें, क्या पता करते कि नहीं करते होंगे लोग यहां पर। 10 दिन का उपवास करने के बाद अब लो साहब हमारे 10 दिन के उपवास भारी तपस्या हो गई, अब निकल रहा है जलूस। अब 10 दिन के उपवास के बाद में जलूस, और फिर बाद में ये देखा जाएगा कि उनके जलूस में कितने बागी थे और उनमें कितने की प्रभावना बांटी थी, जब उनके पर बुलवे भवते तो उनने कितनी कितनी चीजें अपने 10 दिन के उपवास के फलस्वरूप बांटी थी। इसी में लग जाते वो 10 दिन जो कर्मों की निद्रा के थे, वो 11वें दिन कर्म के बंध के कारण बन जाते हैं, वो तपस्या अहंकार से युक्त हो जाती है, तो उस तपस्या का जो फल मिलना चाहिए था वो न्यूट्रल हो जाता है, जीरो हो जाता है। ये खूब